इसके बाद आगे चलते हैं तो आयत नंबर 151 से 152 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी तरीक़ाकार। आप देखिए कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने जिस माशरे में भेजा था ना, बिल्कुल बिगड़ चुकी थी उनकी कैफियत। आज क्या बुराई होगी? आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी पढ़े होंगे। अर-रहीकुल मख्तूम बड़ी खूबसूरत किताब है, सील्ड नेक्टर इंग्लिश में बहुत प्यारी किताब है, तजल्लियात नबूवत बड़ी खूबसूरत किताब है, पैगंबर इनकलाब बहुत खूबसूरत किताब है। मैं आपको 10-12 सीरत की किताबें लिखवा देती हूँ और मैं आपसे एक सवाल भी करती हूँ। हम सब नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, आज तक आपने कौन कौन सी किताबें सीरत के मौजू पे पढ़ी हैं? बिल्कुल पेज वन से लास्ट पेज तक अगर नहीं पढ़ी तो फिर ये मोहब्बत का दावा है सिर्फ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नेमत थे। आपकी मेथडोलॉजी क्या थी? आपने कैसे उस सोसाइटी को रिफॉर्म किया? देखिए, बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, औरत की इज्जत नहीं थी, औरत को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता था, शराब पानी की तरह पी जाती थी, सूद में बाल बाल तक जकड़े हुए थे, कहीं पानी पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। मौलाना हाली की मुसद्दस तो आपने भी बचपन से पढ़ी सुनी होगी ना। इतनी खराबियों के बाद इतने थोड़े वक्त में नबी सल्लम ने जो इनकलाब पैदा किया, आज ब्रिटिश में इसका बहुत तस्करा है। आप कभी जाइए बाहर, कई जगह नबी सल्लम को कोट करते हैं कि द मैन ऑफ रेवोल्यूशन, द मैन हु शोक द अर्थ, वो आदमी जिसने दुनिया हिला दी, जिसने बहुत थोड़े से रिसोर्सेस, बहुत थोड़े से मींस के साथ इतना बड़ा इनकलाब पैदा किया कि इनकलाब ही हो गया। क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है सीरत का वो रुख दिखाया जाए इंसानियत को कि नबी इतने कामयाब लीडर कैसे थे। राहबरे कामिल एक बुक मैंने 2 दफ़ा पढ़ाई हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप अभी लेटेस्ट वाली सुनिए। 19 मुख्तलिफ किरदार हैं नबी के, बींग अ फादर, बींग अ हस्बैंड, बींग अ जर्नैल, यानी बाहसियत है बेटा आप कैसे थे, आप एक पीर होने के नाते कैसे थे, आप एक फौज के कमांडर होने के नाते कैसे थे। और यकीन कीजिए इस वक्त इंसानों को ये बातें बताने वाली हैं। आज कोई नबी सल्लम का कार्टून बनाता है तो हम जाकर अपने ही शहर और अपने ही मुल्क की इमारतों के शीशे तोड़ाते हैं। ये क्या मिला हमें? आप इंसानियत को अल्लाह के नबी का असल रूप तो दिखाइए। आज नॉन मुस्लिम नबी सल्लम की किताबों और आपकी शख्सियत पे बहुत रिसर्च करके आगे जा रहे हैं और हम आपस में झगड़ रहे हैं। तो इस आयत को देखिए कि जिसमें 152 151 कमार सल नफी कुम रसूल मिन कुम, जैसे हमने भेजा आपके अंदर एक रसूल तुम ही में से, जो तुम पर हमारी आयतें पढ़ते थे, तज़किया करते थे तुम्हारा, और तुमको किताब और हिकमत सिखाते थे, और तुमको वो सिखाते थे जो तुम नहीं जानते थे। ये मौजू कुरान में तकरीबन 4 से ज़्यादा जगह आएगा। एक तो पिछले पारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में सुन चुके हैं कि रब्बना वबस फीहिम रसूलम मिनहुम, ए अल्लाह मैंने घर तो बना दिया, अब तू उस्ताद भेज, एक रसूल भेज जो इन लोगों के साथ ये मामलात करे। यहाँ आपको मिल रहा है, आगे सूरत आल इमरान में मिलेगा और आगे सूरत तौबा और फिर आगे आखिरी पारों में तो आप बहुत देखेंगे। यानी आज आपको मुझे ये करना होगा। क्या करना होगा? नंबर एक, इंसानियत को, और हम तो अभी मुसलमानों से ही कर लें तो बड़ी बात है। याद रखिए कि इन मुसलमानों को कुरान पढ़ाना कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। यानी अगर मैं आपको फातह से नास तक पूरे कुरान का दौर करवा दूँ तो ये कोई मैंने इतना बड़ा कारनामा नहीं किया, आप तो मेरे ही जैसे थे। असल में हमें गैर मुस्लिमों तक ये पैगाम लेके जाना था, लेकिन क्या कहा जाए उस उम्मत का कि जिसने भी खुद भी कुरान नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले कुरान पर ईमान, ये वही बात है, हक का तिलावती। पिछले पारे में भी हमने देखा कि कुरान के 5 हकूक है, और अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म पे आपको जो स्लोगन दिखेगा उसमें यही 5 हकूक है कि हम ये 5 हक तो अदा करें। कल क़यामत के दिन कुरान अगर हमारा गिरेबान थाम लेगा, हम क्या जवाब देंगे? तो पहला कि इस पर ईमान लाइए, फिर इसकी तिलावत। कम अज़ कम हमें कुरान को इस तरह से तो पढ़ना है कि जिसमें हराम गलतियाँ ना हों, हमारे हा और ख्वा का फ़र्क नहीं है। हम कहते रहते अल्लाह महदी कल्बी, अल्लाह महदी कल्बी, कि अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे, और हालांकि अब तक क़ाफ़ कुरान वाली क़ाफ़ कल्ब दिल, और काफ छोटी किताब वाली कह ले तो कुत्ता। अपने ज़ोम में आप ये कह रहे थे कि अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे, और मखारिज ही नहीं ठीक, तो आप कह रहे अल्लाह मेरे कुत्ते को हिदायत दे। इस तरह की भी सी हो मिसालें, तो वक्त निकालिए, किसी भी अच्छे उस्ताद को ढूंढिए और कुरान सुनाइए, कोई शर्म की बात नहीं है। आप 40+ भी हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, कुरान तो नाजिल ही 40 के बाद नबी पे हुआ, तो कुरान को सही पढ़ना, फिर इसके बाद ये कि इसके अंदर जो चीज़ों को बयान करना, तर्जमा, तफसीर, जैसे अभी देखिए हम सिर्फ एक कुरान की रूह ले रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है ना। और रात को जब इमाम साहब तरावी में पहला पारा पढ़ा रहे होते हैं तो कई लोग सो रहे होते हैं, ऊँग रहे होते हैं, वक्त पे नज़र होती है, हाय इतनी लंबी रकत हो गई, समझ नहीं आता। तो तीसरी चीज़ क्या है कि इसको समझिए, और फिर चौथी चीज़ कि इसमें से तज़किया हो, अमल के नुक्ते लीजिए, आपकी शख्सियत बदले इसके अंदर, जो ज़ाहरी और बातनी पाकी इसकी होगी, और फिर इस कुरान की तालीम और इसके साथ सुन्नत का इल्म, हिकमत के लफ्ज़ से क्या पता चलता है कि इस पे ईमान लाना, इसको सही पढ़ना, इसका मानी मफहूम समझ के हदीस की रोशनी में कुरान की तफासीर हो, और इसमें किसी के अफकार नहीं चलने चाहिए, प्योर रिसोर्सेज को लेते हुए कुरान के साथ हदीस को लेकर, फिर उसमें से तज़किया के नुक्ते, अमल, मैं क्या करूं, मेरे लिए इस आयत में क्या है, मेरे लिए इसमें अमल क्या है, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये होता है तो इसको फिर अमल में लाकर दूसरों के साथ शेयर करना। असल में कुरान तो यही था। हम ये आखिरी सीढ़ी से पहले गिर जाते हैं, उम्मत वसत का मौजू हमें यही बता रहा है। फिर इसमें हमने अल्लाह ताला की एक बड़ी प्यारी बात सुनी कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, बस तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हारा करूँगा। यानी जितना किसी इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र शामिल हो जाता है, अल्लाह सुब्हान तआला उतना उसके दिल में खुशी भरते हैं। शुक्र का मतलब क्या है? बैठकर तस्बीह पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ये भी है, और बंदे मोमिन की तस्बीह तो उसके दिल की धड़कने हैं। लोग जो काम तस्बीह से लेते हैं वो एक ईमान वाला अपने दिल की हर धड़कन पे लेता है अल्लाह अकबर कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहकर, तो फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, अल्लाह ताला इस 152 आयत में क्या कहते हैं कि तुम अक्सर मेरा जिक्र किया करो, मेरी याद। जिक्र के कई दर्जे आगे जाके कहीं बात करेंगे, लेकिन ज़ुबान से भी, दिल से भी, अमल से भी जिक्र करो, शुक्र करो, और मेरी ना शुक्री ना करो, क्योंकि शुक्र कुर्ब इलाही का ज़रिया बनता है, इसका फ़ायदा शुक्रगुजार बंदे ही को पहुंचता है। देखिए आप पानी पियेंगे तो आपकी प्यास बुझेगी, आप सोएंगे तो आप रिलैक्स होंगे, तो जिक्र है, शुक्र है, अल्लाह के साथ खूबसूरत ताल्लुक है ना, ये सब कुछ बिल आखिर आपको फ़ायदा देता है। अगर मैं इतने हिस्से को ज़रा सा समअप कर दूँ, पारे के आगाज़ से ही आपको एक जिम्मेदारी दी गई, आपके कंधों पे एक जिम्मेदारी आ गई, वजअलनाकुम उम्मतन वसता की, आप सोच में पड़ गए, आपने कहा अच्छा मुझे तो आज पता चला है कि मुझसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि मैंने नमाज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, मुझसे ये भी पूछा जाएगा कि मेरे घर के मुलाज़मों ने पढ़ी है कि नहीं, और जिस हद तक मेरा बस चले मेरे बच्चे, मेरे हमसाए, मेरी दोस्तें, और बढ़ते जाएं तो इसका दायरा कार आपको मिलने वाले हर शख्स के साथ है, डॉक्टर डॉक्टर्स में, इंजीनियर इंजीनियर्स में, आपके शौहर अपनी जॉब पे बैठे हैं, सबके बारे में पूछा जाएगा, और नमाज के बाद फिर नॉन मुस्लिम, आप तो माशाल्लाह 97%+ मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में बैठे हैं, कभी कोई मुझसे तो पूछे। हम जैसे लोग जो बाहर की दुनिया में रहते हैं और जो फिर जगह जगह जाकर देखते हैं, खून के आंसू रोता है इंसान, इतने प्यारे लोग, पिछले तकरीबन 12 साल से ऑस्लो, नॉर्वे, उसके इर्द गिर्द रहे हम, पूरा यूरोप ही रेंज में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मुल्कों में जाते, यकीन करें कि अगर कलमा पढ़ लें तो ये लोग जन्नती हैं, ये जुमला आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज तक कलमा पढ़ा क्यों नहीं? द मोस्ट स्माइली नेशन इज नॉर्वेजियन, कितना बदनाम नाम है ये चंद लोगों के किसी एक्शन की वजह से, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता सकती हूँ क्योंकि आप तो नहीं उनको जानते, हमारे नेबर, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा रूली, रूली कहते हैं बड़े सॉफ्ट इजी गोइंग लोग, इतने वो प्यारे लोग हैं, और मैं जब भी जाते आते वॉक में, घर से, स्कूल से निकल के देखती हूँ, मेरा दिल रोता है उनको देख के कि अल्लाह जी इतने खूबसूरत चेहरे, या अल्लाह जी इतने अच्छे लोग, इनको पता ही नहीं ये आग में जाना चाहेंगे, कोई भी नहीं जाना चाहता। और आप उनसे पूछे डू यू बिलीव इन गॉड, नो आई डोंट बिलीव इन गॉड, एथियस कंट्री है वो, क्रिश्चियन भी नहीं है वो, आधे से ज़्यादा यूरोप इस वक्त क्रिश्चियन नहीं रहा, वो कहते वी डोंट बिलीव इन गॉड, अमेरिकन डॉलर पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहते हैं इन गॉड वी डोंट ट्रस्ट। बाकी बातें आप कहाँ से करेंगे, आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज्म और पेगनिज्म की बातें क्या करेंगे आप? आपके हमसाए तो अल्लाह को ही नहीं मानते, और दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्कों में से एक मुल्क नॉर्वे, इतनी फितरत दे कर इन नफी खल की समावती वलट, फिर भी और आपको नहीं पहचानते, तो उस वक्त एहसास होता है क्या करना है तुम लोगों ने माल कमा के, तुमने क्या करना है बैंक बैलेंस बनाकर, अपने मुल्कों में अपनी हवेलियां और कोठियां बनाकर, अगर तुम्हारे हमसाए को अल्लाह ना मिला तो। ये दर्द सिवा होता है, जब आप इस दर्द को लेके निकलते हैं तो अब इस रास्ते में मुश्किलें आएंगी। याद रखिए, दावत इल्लाह का काम दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। क्यों? कि लोगों से उनकी पसंदीदा चीज़ें छुड़ाकर अल्लाह की पसंद की चीज़ें देना बहुत मुश्किल है। आप बच्चे के हाथ से उसका खिलौना छुड़ाकर किताब दें, देखें कितना चीखता है। तो लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो अपने कामों में होते हैं। तो इसलिए फिर अब आगे 153 से 157 में अल्लाह ने एक पैगाम दिया कि अल्लाह की राह में आजमाइशें तो आके रहेंगी। वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यि मिनल खौफि वल जूई व नक्सि मिनल अमवाली वल अनफुस वबश्शिरिस्साबिरीन। पैगाम आपको मुझे दिया कि या अय्युल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। ऐ ईमान का कलमा पढ़ने वालों, ऐ इस्लाम का नाम लेने वालों, मदद मांगो नमाज और सब्र से। याद कीजिए, पहले पारे में भी यही आयत आई थी, जो लोग और से सुन रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, वहाँ यहूद के तनाजर में थी, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह यहाँ मुसलमानों के लिए आई, क्योंकि ये काम ठंडे ठंडे तो नहीं होगा। हम सोते रहें और 5-6 किस्म की इफ्तारियां बना के खाते रहें और सहरियां खाएं और क्या पकेगा और आज क्या खाएंगे, इससे बात नहीं बनेगी। तो क्या बताया कि इस रास्ते में सब्र लाजमी है। घर में आराम से बैठकर 5 बारे भी मैं पढ़ लूँ तो मेरा क्या बिगड़ेगा? तो नेकी करना तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने यहाँ मुश्किलात में करने के दो बड़े काम, नंबर एक सब्र और दूसरा नमाज। जब दुनिया वालों से कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो जाए नमाज पर खड़े हो जाओ, यही नबी की सुन्नत थी। मक्का में तो इतना टॉर्चर था और इतनी परेशानियां थी, मक्की दौर को खोलकर देख लीजिए आप, अपने साथियों के ऊपर जो तकलीफें आती थी उसको देखकर तकलीफ महसूस करते थे, लेकिन जा नमाज पर खड़े हो जाते। तो नमाज तो वैसे भी सब्र सिखाती है, तो सब्र और नमाज से काम लेंगे, क्योंकि मसाइबे खमसा में से कोई एक तो आएगी। इस आयत का नाम अक्सर मैं कहती हूँ मसाइबे खमसा। 5 किस्म की तकलीफें अल्लाह ने इसमें दे दी। लिस्ट वाला नब्लुवन्नकुम श्योर शॉट। ये दुनिया फूलों की सेज नहीं है, दुनिया में गलत काम करने वालों के रास्ते में इतनी रुकावटें हैं तो अच्छा काम करने वालों में तो होगी। तो अल्लाह कहते कभी खौफ आएगा, कभी भूख आएगी, कभी माल और जानों में कमी आएगी, कभी तुम्हारे फल कम होंगे। बबशर साबरीन, सब्र वालों को खुशखबरियां दे दो। क्या पता चला कि आजमाइश का मकसद इंसानी सलाहियतों को निखारना होता है। जिंदगी में कभी भी आप पे कोई आजमाइश आई हो, सोचिए, कोई माशी हालात मर्दों के बिगड़ जाते हैं, कारोबार ठप हो गया, जवान बेटे की डेथ हो गई, बेटी पलटा दी गई, ये सारी आजमाइशें कहीं ना कहीं आपको अल्लाह ताला के करीब कर देती हैं। फिर याद रखिए कि खौफ हो, माशी मुश्किलात हो, माली नुकसान हो, जानों का जिया हो जाए, औलाद की कोई आजमाइश आ जाए, ये सब आजमाइश की मुख्तलिफ सूरतें हैं। और इन आजमाइशों में वही शख्स कामयाब होगा जो सब्र और साबित कदमी से इनका मुकाबला भी करेगा और नमाजों का आदी होगा। नमाज असल में अल्लाह ताला को अपना दुख सुख सुनाना है। और याद रखिए कि आजमाइशों में सब्र के जरिए कामयाबी मिलती है, रहमत इलाही आती है इंसान पे और हिदायत इलाही उसको मिल जाती है। यानी जब अल्लाह बंदे का दिल थाम लेता है तो तकलीफ़ों में भी उसको खैर मिलती है, और जो शख्स मुश्किलात में सब्र और इस्तकामत दिखाए उसको सुकून कल्ब हासिल होता है। कोई ऐसा दुख जो आपको अल्लाह के करीब कर गया, उन 10 खुशियों से अच्छी हैं जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। तो लिहाजा परेशानियों में ना आइए। और अब यहाँ एक औरत पे आई हुई एक आजमाइश की कहानी है, इन सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। हजरत हाजरा की बेकरारी की यादें हैं। हजरत इब्राहिम अपनी अखलौती औलाद, बुढ़ापे की औलाद और बुढ़ापे की तरफ जाती हुई बीवी को अल्लाह के हुक्म से उस जगह छोड़ गए जहाँ आज बैतुल्लाह। सूरत इब्राहिम में ये किस्सा आएगा, गैर अज़ीज़ ज़रइन, वहाँ घास भी नहीं उगती, बेआबो गया, ना पानी ना घास ना तिनका, और बीबी हाजरा को उनके न्यू बॉर्न बेबी के साथ अल्लाह के हुक्म पे छोड़ गए। ये कितनी ना समझ में आने वाली बात थी। आज के दौर में आप और मैं अपने ऊपर लीजिए, कोई तकाबुल नहीं है हमारे शोहरों का और हज़रत इब्राहिम का और बीबी हाजरा का और हमारा। लेकिन आज इसमें अपने लिए सबक ले लीजिए कि जब अपने घर थोड़े से वीरान किए जाते हैं तो अल्लाह का घर आबाद होता है। हम आज अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। हम अपने घरों में खुश हैं, होम स्वीट होम, मेरा घर मेरी जन्नत। हम खवातीन सुबह उठ के घर को चिपकती हैं, सोने तक घर जान नहीं छोड़ता, और मर्द बेचारे कमा कमा के माली तौर पे मदद करते हैं, और इसी में हम खो जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी बीवी बच्चे को लेके जाना ये आपकी मेरी अकल में नहीं आएगा। इस पे ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्यों कैसे कब। अल्लाह ने आज उम्मत मुस्लिमा के लोगों को बता दिया कि तुम्हें सिर्फ अपने घर की फिक्र नहीं करनी, इंसानों के घरों की भी फिक्र करो। अपने बच्चों की फिक्र नहीं, तुम्हें इंसानों के बच्चों की भी फिक्र करनी है। और एक औरत जो अपने बच्चे की प्यास में सफ़ा और मरवा के बीच में चली, अल्लाह को उसकी अदा इतनी प्यारी लगी कि क़यामत तक हज और उमरा करने वाले मर्दों तक को उसके नक्शे कदम पे चला दिया। कभी अल्लाह औरतों से वो काम ले लेते जो मर्द भी नहीं कर पाते। और वहाँ जमजम के चश्मे फूटे थे नन्हे इस्माइल की एड़ियों से। आज की माँ की दौड़ धूप इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम होगा। आज अगर औरतों के हाथों में कुरान आ रहा है ना, और ये सदी वाकई कुरान की सदी है, और जिस जिसने इसमें हिस्सा डाला है अल्लाह उनकी कब्रों में ठंडक दे रहा होगा इंशाल्लाह। फिर इसमें आप देखिए एक लफ्ज़ शायर इल्ला आता है ना, शायर शईरा की जमा है, जैसे शऊर का लफ्ज़ आप बोलते हैं ना, बालों को शार कहते हैं अरबी में, बाल से बारीक समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग। और रिचुअल्स, शईरा कहते हैं एक अलामत को, यहाँ मुराद हज के मनासिक हैं, यानी आपका खड़ा होना, सही करना, हदी कुर्बानी करना, यानी उम्रे और हज के दौरान जो रिचुअल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनका तस्कर है। इसके बाद आयत नंबर 159 से 163 को देखें तो हक को छुपाने वाले अल्लाह की रहमत से दूर हैं। इन अल्लज़ीन यक्तुमून मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उसको जो हमने नाजिल किया बय्यिनात में से और हिदायत में से, इसके बाद के उसको बयान कर दिया था लोगों के लिए इस किताब में, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत और लानत करने वालों की लानत। यानी अल्लाह को हक को छुपाना इतना बुरा लगा कि लफ्ज़ लानत आ गया। कुरान के लफ्ज़ हैं आपके सामने देख लीजिए, हम बहुत भी सॉफ्ट तर्जमा करें ना तो वो रहमत से दूर है, क्योंकि लानत कहती रहमत से दूरी को है। बोध, बोध और लान एक ही वजन है। क्या पता चला कुरान पढ़ रहे हैं ना इस वक्त। आज लोग कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए हक को छुपा देते, कभी किसी वजह से कोई नाराज ना हो जाए, कोई खुश हो जाए। आप देखिए ना, लोगों को खुश करना हो तो आप मिठाई के डब्बे बांटिए और कुरान थोड़ा सा सुनाइए और बांट के चले थे लोग खुश। आज ऐसे कुरान कितने पढ़ेंगे आप देखिएगा, हर तरावी के बाद मिठाई बटेगी, हर दौरे कुरान के बाद शक्कर पारे और कुछ ना कुछ बांट देंगे। अल्लाह कहता है कुरान पढ़ के तुम्हें नहीं समझ आई तो फिर बाद में कैसे आएगी। और इस पर एक हदीस भी सुन लीजिए 159 आयत पे, कि हज़रत अबू हुरैरा से ये रिवायत सनद हम तक पहुंची कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिससे इल्म का कोई ऐसा मसला पूछा गया जो उसको मालूम था, फिर भी इसने इसे छुपाया, तो उसे क़यामत के दिन आग की लुगाम डाली जाएगी। ये इब्ने माजा की रिवायत 266 है। यानी इसमें इल्म देने वालों, कुरान सिखाने वाले उस्तादाए कराम, उनकी जिम्मेदारी है। मसलन मसला मालूम था कि सूद हराम है, छुपा लिया। चेहरे का पर्दा है कि नहीं, शराब का क्या हुक्म है, अब लोगों ने पूछा और आप कहते हैं हम बता दिया तो फिर लोग तो आना छोड़ देंगे, ये होगा वो होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पढ़ कर ना बदलेंगे लोग तो कब बदलेंगे। फिर आगे देखिए आयत 164, इस एक आयत की खूबी है, कुरान पाक में मुख्तलिफ अल्लाह ताला की निशानियां जो दी गई कायनात में जो फिरी, वो सारी इस एक में जमा हो गई। यानी इसमें आप गिनेंगे ना बाद में तो 7 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। मसलन इन नफ़ी खल्क समावाती वलर्दी वख्तिलाफिल्लैली वन्नहार, यहाँ से लेके लायातिल्ली कौमी याकिलून, कायनात की तख्लीक और इसके नज़्म और तदबीर के मुतलिक 7 मुख्तलिफ काम है। मसलन आसमान की पैदाइश, ज़मीन की पैदाइश, रात कैसे आ जाती है, दिन कैसे चला जाता है, इतने बड़े समंदर में पानी के ऊपर एक कश्ती ऐसे तैरती है जैसे कोई पत्ता तैरता है, फिर आसमान से बारिश, फिर इसी तरह देखिए कि रेंगते हुए जानवर, हवाओं का चलना, बादलों का तैरना, क्या तुम्हें ये सब कुछ मालिक की खबर नहीं देता। आज आप देखिए, आप किसी क्रिकेटर की क्रिकेट देखकर आप उससे मरूब हो जाते हैं, गुलूकार के जो गाने हैं उससे आप खुश हो जाते हैं, राइटर की बुक पढ़ के आप खुद से इम्प्रेस होते हैं ना, तो क्या तुम इस कायनात को देखकर अल्लाह से इम्प्रेस नहीं होते। और इसमें एक सबक है कि کہ نظام کائنات یکسو ہو کر، فوکسڈ ہو کر، تسلسل کے ساتھ اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلے ادوار میں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور تھا، جس میں ایک تصور کیا تھا کہ ایک آسمان کا خدا ہے، ایک زمین کا. کائنات چلی نہیں سکتی. صرف بارش کا فینومنن دیکھیے کہ سمندروں کے اوپر سے پانی اٹھتا ہے، ویپوریٹ ہوتا ہے، اور آسمان سے بارش کی صورت میں برستا ہے. یعنی نیچے سے پانی اٹھتا ہے اور اوپر سے آ کے پھر برستا ہے. اب اگر دونوں خداؤں کی کوآرڈینیشن نہ ہو تو بارش بھی نہ ہو. آپ کے میرے لیے خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کائنات کا اتنا خوبصورت چلنا. آج بھی آپ دیکھیے، ایک گاڑی کو چلانے کے لیے دو ڈرائیور بیٹھ جائیں، وہ تو بڑی بات ہے. آپ کے کچن میں کام کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہو جائے، پریشانی نہیں شروع ہو جاتی؟ ایک ملک کی حکومت دو لوگ چلانے کے دعوے دار ہو جائے، ایک بس کے دو ڈرائیور ہو جائے، تو کیا پتہ چلا کہ لوگوں عقل سے کام لو، اللہ ایک ہے. تو یہ آیت آپ کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتی ہے کہ آپ جب بھی کبھی بادل دیکھیں، بارش دیکھیں، دھوپ، سورج، چاند، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے. اس کے بعد آیت 165 سے 167 میں دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرت ناک انجام ہے. لوگ عموماً اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اور جو لوگ کہتے ہیں وہی وہ کہنے لگتے ہیں. کسی کے پیچھے جاتے ہیں، تقلید کا قلادہ گلے میں ڈال کر اپنی عقل بند کر دیتے ہیں. دنیا میں جتنا بھی شرک پھیلا، کم و بیش اس کے پیچھے یہی سوچ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت 165-167 میں اس بات کو بتایا کہ جو لوگ ساری زندگی دوسروں کے سہارے پہ جیتے تھے، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر لیتے ہیں. ند، ند سے جمع انداد، پہلے بھی گزرا پچھلے پارے میں، یعنی مد مقابل، پارٹنر، ایسوسیشن. اب دیکھیے کہ دنیا میں ایک شوہر برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے سوا کسی اور کو بھی شوہر کہے. ایک بیوی برداشت نہیں کرتی کہ میرا شوہر میرے سوا کسی اور کا بھی شوہر ہو. ایک مالک برداشت نہیں کرتا کہ پیسے تو میں دے رہا ہوں اور میرا ملازم کسی اور کو بھی مالک سمجھے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں تھیں. ہم کیسے کسی کو اللہ کا برابر کر سکتے ہیں؟ جب ایمان والا اللہ کی محبت میں ڈوبتا ہے نا، تو والذین آمنوا اشد حب للہ، اللہ کی معرفت، جیسے پیچھے آیت الایات ہے نا، سات قسم کی چیزیں دیکھنے والے کو بتائیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہو سکتی؟ آگے دیکھیں گے تیسرے پارے میں، حضرت ابراہیم نے نمرود سے مکالمہ کیا تھا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو مغرب سے لیا. تو پتہ کیا چلا کہ اس کائنات میں شرک کی کوئی جگہ نہیں ہے. آج لوگ کبھی زندہ انسانوں، کبھی مردہ لوگوں کو اللہ کے کاموں میں معاون سمجھتے ہیں. اس کا رد ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. آپ جا کر اس کا ترجمہ پڑھیے اپنے مصحف سے، گھر میں جو قرآن ہے آپ اس میں سے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گا. اس تبر الزین من الزین تب، اس دن وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، حالانکہ سبھی عذاب کو دیکھیں گے. یعنی وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور چیز بتائی کہ جو جس کو مرضی مشکل کشا سمجھے، مکہ والے سمجھتے تھے لات، منات، عزا، یعوق، یغوث، نصر، یہ پانچ حضرت نوح کی قوم کے بت تھے، تذکرہ ان کا انشاءاللہ سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے. لیکن جب سخت مشکل آتی تھی تو پھر اللہ کو پکارتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کی اسلام کی وجہ کیا بنی؟ کہ سمندر کے اندر اگر ہمارے بت نہیں آ کے ہماری مدد کر سکتے تو پھر وہ باہر بھی نہیں کرتے. تو بہرحال مشکل میں فطرت پہ پڑے ہوئے جو پردے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے اس آیت میں ان کی حسرت کا تذکرہ کر دیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، وہ بڑے جن کو لوگ ساری زندگی اللہ کے کاموں میں معاون سمجھتے رہے، وہ کہیں گے کہ ہم تو آج تمہارے کام نہیں آئیں گے. تو وہ بیچاری بھولی بھالی سیدھی جاہل قسم کی عوام جو ان کے در پہ کھڑی رہتی تھی، وہ کہے گی اگر ایک بار اللہ ہمیں دنیا میں بھیجے فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ، ہم تو ان سے بیزار ہو جائے جیسے کہ آج ہم سے ہوئے. اور اس طرح اس وقت وہاں حسرتیں ہوں گی. کیا پتہ چلا کہ آخرت میں لوگ نہ خداؤں کی بے بسی اور بے وفائی پر حسرت کریں گے. تو گویا کہ یہاں تک کیا بات سمجھ آئی ہے کہ ہمیں آنکھیں کھول کر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ چلنا ہے.